हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण वल्लभ मंदिर श्री श्री कृष्ण वल्लभ मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों भक्ति शास्त्र यथारूप के भगवत श्रीमद भगवद गीता यथारूप के अध्ययन के नवे अध्याय के तीसरे विभाग में मूर्ख भक्ति से मुंह मोड़ते हैं परंतु जो भक्त है वो भक्ति करते हैं, उसमें 22वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो महा ये जनाः परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यास चिंतयन तो माम का अर्थ क्या है? एकमात्र मेरा श्री कृष्ण का चिंतन करे और किसी का चिंतन न करे। और अब अनन्यास के चिंतयन तो माम के मेरा एकमात्र मेरा चिंतन करे, मेरा सुमरण करे, मेरी भक्ति करे और किसी की नहीं। ये जनाहा परुपासते, ये का मतलब क्या? ये जनाहा परुपासते ये का अर्थ क्या लेना चाहिए? ये जनाहा ये है भगवान की भाषा, भगवान की भाषा सबके लिए है। कोई कहीं का हो, किसी देश का हो, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, पापी है, तापी है, सबके लिए। ये जना कहने का मतलब ये है भागवत धर्म, भक्ति सब कर सकते हैं। क्योंकि ये भक्ति का श्लोक है ना, तो भक्ति सब कर सकते हैं। ये जना कोई भी परियुपासते का क्या अर्थ है? परिपाशते का अर्थ है प्रकृष्टेण रूपेण उपासते। प्रकृष्टेण रूपेण का मतलब पूर्ण रूप से, अधूरा नहीं, पूर्ण रूप से जो मेरी उपासना करे। और उपासना का अर्थ क्या होता है? नजदीक में बैठना, उप आसन। नजदीक में बैठना मतलब उप मतलब पास में, आसन मतलब नजदीक बैठना। काय के लिए? सेवा करने के लिए। भाई नजदीक क्यों बैठेगा? सेवा करने के लिए। तेषां, अब देखो पहला है, पहली जो लाइन है, दो लाइन है, वो है भक्त का कर्तव्य, वो है भक्त का कर्तव्य। और पीछे दो लाइन है भगवान का उनके साथ व्यवहार। अगर भक्त करेगा अनन्याश्चिन्तयन्त और परुपासते, तो भगवान करेंगे योग क्षेम वहां। परंतु तीसरी भी एक भक्त की गुण होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है? नित्य भी, नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मेरे सेवा में लग के मेरे पार्षद बनने की इच्छुक हैं। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ तीन चीजें चाहिए भक्त को, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, परुपासते, नित्य अभियुक्ता नाम। अब तीनों का अर्थ आपको साफ समझ में आना चाहिए। और किसी का चिंतन नहीं करे, मेरा श्री कृष्ण का चिंतन करे, मेरी पूर्ण रूप से उपासना करे और मेरी सेवा में लग के मेरा सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा करे, और किसी की नहीं, तो उसके योग क्षेम का बहन मैं करूंगा। जो कमी है वो पूरी करूंगा, जो नहीं है वो लाके दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वो लाके दूंगा। तो इसमें हम प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण के भाव को लिया है, चक्रवर्ती पाद ने थोड़ा सा सामान्य बात भी लिखी है कि मैं भार उसका उठाता हूं जैसे प्रेमी प्रेमी का सारा भार उठाता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं, श्रील प्रभुपाद जी का पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी ने जो पहली लाइन लिखी है वो है अनन्यस चिंतयंतो माम की परिभाषा। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना से बेमुख नहीं हो सकता, 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है और भक्ति में लगता है। तो पहली लाइन किसका अर्थ है और फिर दूसरा लिखा है भक्ति में लगता है, ये है उपासते परियोपासते, और उसके बाद लिखा है अभियुक्ता नाम। वो कैसे भक्ति में लगता है, श्रवण कीर्तन, ये पूरी नवधा भक्ति लिखी है प्रभुपाद जी ने, पूरी नवधा भक्ति है ना, नव के नव लिखे है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब पढ़े है ना। तो पहला परिच्छेद है अनन्य चिंतयंतो माम परियुपासते और नित्य अभियुक्ता नाम की परिभाषा। ये सारे कार्य जो भक्ति के हैं ये कैसे हैं, एक तो पहला शब्द और है, एक तो पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है और दूसरा ये सब मंगलकारी शुभ कार्य हैं। और इससे लाभ क्या होता है भक्त को, आत्म साक्षात्कार होता है। और ये अब अभी युक्ता नाम का अर्थ लिखा है, देखो क्या लिखा है, ये अभियुक्ता नाम का अर्थ लिखा है, अभियुक्ता नाम का अर्थ है ये। वो एकमात्र मेरे सानिध्य की कामना करता है, ये लिखा है ना, मेरे संग की कामना करता है, ये लिखा है ना। इसका तो इसका मतलब पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, ये शुभ है, ये नहीं, ये शुभ है, ये भक्ति का कार्य शुभ है, पुण्य है, शुभ है। और दूसरा पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है और भक्त को भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के योग्य बनाता है, इसका अर्थ ये हुआ। वो भक्त चाहता है कि मैं भगवान का नित्य पार्षद बनूं, सानिध्य संग प्राप्त करूं, उसके लिए ये भक्ति के कार्य शुभ भी हैं और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण भी है और उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि ये भक्त है ना, इसलिए आत्म साक्षात्कार शब्द ठीक नहीं है, उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी योग की परिभाषा लिख रहे हैं, ये जो लाइन आप पढ़ेंगे ना ये योग की परिभाषा है। भगवान के मिलने में जो रुकावट है वो भगवान समाप्त कर देंगे, इसको कहते हैं योग। तो योग की यहां क्या परिभाषा है आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्त भगवान को पाना चाहता है, उसमें जो कमी रह गई वो भगवान पूरी कर देते हैं, ये है योग। योग का मतलब है कमी पूरी करना, तो कमी कौन सी रह गई, भगवान से मिलने में जो थोड़ी त्रुटि रह गई वो भगवान पूरी कर दे। ये चक्रवर्ती पाद, ये बलदेव विद्याभूषण जी का भाव है। अब क्षेमम का अर्थ लिखते हैं, भगवान की कृपा से ऐसा भक्त फिर कभी भी भौतिक बंधन वाले जीवन में पतित नहीं होता, आता नहीं है, और इसको कहते हैं क्षेमम। इसका मतलब भगवान की, भगवान का रक्षण, कृपा से भक्त का रक्षण करना। तो क्षेमम का अर्थ क्या हुआ, अपनी कृपा से भगवान भक्त की पतन से रक्षा करता है, अथवा जितना उसने अर्जित किया है उसको नहीं बिगाड़ता, उसको रहने देता है। अब प्रभुपाद सामान्य सारांश दे रहे हैं, भगवान भक्त की सहायता करते हैं कृष्ण भावना को प्राप्त करने के लिए, कैसे, योग के द्वारा, और वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाए और फिर भौतिक जगत में पतित न हो, ये क्षेम, ये क्षेम की परिभाषा है। श्री प्रभुपाद जी ने इतना ही लिखा है इसके लिए, योग क्षेम। वहामी का कल अपन ने कथा का चर्चा किया था, सबको मालूम है अर्जुन आचार्य की कथा, याद रखना अर्जुन आचार्य की वाहमी की कथा। भगवान कृष्ण अपने कंधे के ऊपर ब्राह्मण के घर में भोजन का सामग्री लाए, और ये श्लोक प्रचार में किसके लिए हम उपयोग करते हैं बोला था, भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवद गीता का शब्द काटा तो भगवान श्री कृष्ण की पीठ पे निशान लग गया। प्रचार में हम इसको कहीं कथा करते हुए हमने ऐसे भी कहा है कि देखो भगवान ये शरीर की रक्षा नहीं करते, हमारी आत्मा, हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसकी रक्षा करते हैं। और प्रायः हम प्रमाण, प्रचलित प्रमाण देते हैं, परम पूज्य जयपिता गोस्वामी महाराज शारीरिक रूप से कितना कष्ट आया, लेकिन उनकी स्मृति कृष्ण भावना की वैसे है कि नहीं, अब भी स्मृति में कोई अंतर नहीं आया। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जो भागवत उनके हृदय में वैसे की वैसे पड़ी है, तो भगवान ने उसका तो रक्षण कर लिया ना। तो भगवान रक्षण किसका करते हैं, जो आध्यात्मिक हमारी उपलब्धि है उसको नष्ट नहीं होने देते किसी कारण से। ये सामान्य उदाहरण, हम ये है आध्यात्मिक उदाहरण। इतिहास में उदाहरण देंगे तो भगवान श्री कृष्ण एक नरसिंह मेहता भक्त हुआ है, आपने नाम सुना है नरसिंह मेहता, एक ये गुजरात का एक भक्त हुआ है जिसके दो काम भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। एक तो उसकी बेटी की शादी में रुक्मणी और श्री कृष्ण उसके मामा मामी बन के आके उसका सारा खर्चा अपने भगवान ने कर दिया, उसके पास तो कुछ था नहीं, तो उसके योग को बहन किया, उसकी कमी को पूरा किया। दूसरा कोई उधार, कोई पहले बैंक नहीं था ना, तो लोग क्या करते थे, पैसे देते थे बड़े सेठ को और ये चिट्ठी लिख के देता था तो आपको दूसरी जगह पैसे मिल जाते थे। तो किसी ने पूछा कि हम जा रहे हैं वृंदावन तो पैसे किसके पास रख जाए वहाँ मिले, तो लोगों ने मजाक में बोला ये जो बड़ा सेठ है ना नरसिंह मेहता ये चिट्ठी लिख देगा, इसको दे दो। लोगों ने किसी को धोखा दिया उनकी दृष्टि से, उसने पैसे दिए कि ये हमारे को वृंदावन में चाहिए, हम यात्रा में जा रहे हैं। बोला ठीक है गोपाल के नाम चिट्ठी लिखता हूँ कि इसको इतना पैसा दे देना, और वो पैसा मिला, वो भंडारा करके सबको खिला दिया। ये यहाँ सारे आके वृंदावन ने पूछा गोपाल कहाँ है, तो कोई कहे यहाँ गोपाल तो है नहीं, गोपाल नंदलाल का बेटा कौन है, तो कोई मिले नहीं, ढूंढा तो भगवान का, भगवान का भक्त का वचन तो पूरा करना है। तो भगवान साक्षात प्रकट होके उसको उसके पैसे भर के दे दिए जितने दे भी आए थे। ये योग की परिभाषा है। और क्षेम की परिभाषा, भक्त के पास जो है उसकी भगवान कैसे रक्षा करते हैं। एक महात्मा ने भगवान का चरित्र बहुत अद्भुत लिखा, परंतु उस चरित्र में जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत भाषा जब बोलते थे तो सबको काटते थे, तो लोग शत्रु होके उनको मारना भी चाहते थे, ऐसे भी लोग इकट्ठे करते थे। तो राम जी का भक्त था, उसने राम जी की महिमा लिखी थी, लेकिन पंडितों को उसमें आपत्ति होने लगी, तो पंडितों ने बदमाशों को पैसा दिया कि इसके ये किताब चोरी करके नदी में डाल दो। वो कुटिया में बैठा है, रात को सो गया, लालटीन जल रही थी, लालटीन बंद हो गई, तो इन्हें बोला अंदर जाके कुटिया में लेते हैं। तब देखें कि दो लड़के सांवला और गोरा धनुष बाण खन के उसकी रक्षा कर रहे हैं, हाथ में लिया रक्षा कर रहे हैं। ये 4 बजे तक बैठे परेशान हो गए कि इसे ये बाबा के पास खाने का नहीं है, चौकीदार कहाँ से दो लाया। और जब 4 बजे तो उठ गया महात्मा, महात्मा 4 बजे उठ गया तो ये चोर जाके प्रणाम किया, बोला महाराज ये तो बताओ आपके पास भिक्षा लेके खाते हो, दो चौकीदार कहाँ से लेके। बोले चौकीदार कहाँ से आए। बोला सारी रात हम घुस के ये आपकी पोथी उठा के न मंदाकिनी में बहाने वाले थे, परंतु ये दो गोरा और सांवला धनुष्मान लेके खड़ा था। वो समझ गया भाई ये राम लक्ष्मण अपनी शिक्षा की रक्षा करने के लिए। तो ये है क्षेम, क्षेम का मतलब भक्त की उपलब्धि को भगवान नष्ट होने नहीं देते, कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता। और हाँ, अपने जीवन में भक्तों को ये श्लोक की अनुभूति होती है कि कैसे भगवान सब काम बिना किसी परिश्रम के पूरा करते हैं भक्तों का। ये व्यक्तिगत हमने अपने जीवन में इसको अनुभव करके देखा है, बिना किसी प्रयास के सब काम अपने आप योग भगवान ने कमी पूरी कर देते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो ये श्लोक भक्तों के साधन के लिए भी बड़ा विश्वास का, श्रद्धा का सूचक है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम प्रचार में कभी ऐसे भी बोलते हैं, भगवान कहते हैं 24 घंटे सब मेरी सेवा करो तो फिर घर परिवार कैसे होला, तब भगवान बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं करूँगा। और तुम चिंता करोगी तुम्हारी बुद्धि से, भगवान चिंता करेगा भगवान की बुद्धि से, तो दोनों में अंतर है ना। भाई एक गरीब माता जी थी, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, बड़ी चिंता में थी कैसे करूं। तो सेठ जी ने कहा मैं बेटी की शादी करूं। अब सेठ बेटी की शादी कराए तो सेठ अपने अपने लेवल पे कराएगा, अपने अपने लोग बुलाएगा तो उतना बड़ा काम करेगा ना, गरीब तो उतना नहीं कर सकता है। तो भगवान जब हमारी भरण पोषण करेंगे, इसको भरण पोषण लिखा है योग को, चक्रवर्ती पाद ने भरण पोषण लिखा है, शरीर का भरण पोषण चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, भक्त के शरीर का भरण पोषण भगवान ऐसे करते हैं जैसे पति परिवार अपने का करता है घर का बड़ा, या प्रेमी प्रेमिका का करता है। फिर एक प्रश्न उठाया है कि भगवान आत्माराम है, आपत काम है, उसको क्या जरूरत है भक्त के कुछ करने की, और भक्त क्यों भगवान को काम में लगाता है सेवा में। कहते भगवान कहते भक्त नहीं लगाता है, मैं अपनी इच्छा से सेवा करने की कामना करता हूं उस भक्त की, जैसे प्रेमी प्रेमी पका की सेवा करना चाहता है, क्योंकि उस भक्त की सेवा में मुझे बहुत आनंद आता है। और उदाहरण कैसे भगवान सेवा कर रहे हैं, यही भगवद गीता का उदाहरण दे दीजिए, अर्जुन की रक्षा की, क्षेम किया, जो कमी थी उसको पूरा किया, योग जहाँ जहाँ अर्जुन नहीं पूरा हो रहा था वहाँ भगवान ने उसको सारा रास्ता बताया कि युद्ध में भीष्म को कैसे मारना है, ये अर्जुन के योग की पूर्ति की, कैसे द्रोणाचार्य का वध करना है ये भी तो भगवान ने बताया, कैसे कर्ण को मारना है, ये सब योग हुआ ना अर्जुन का। भाई अर्जुन में जो कमियाँ, मानो अर्जुन जो नहीं कर पा रहा था, ये तीनों अर्जुन से मरने वाले नहीं थे, इन तीनों के लिए जो बुद्धि दी वो तो भगवान ने दी ना, तो ये योग हो गया। और ऐसे भारी अस्त्र शस्त्रों से रक्षा की, ये क्षेम हो गया अर्जुन का। वो जो नाग अस्त्र चलाया था कर्ण ने, वो तो निष्फल हो ही नहीं सकता था, लेकिन भगवान ने घोड़ों को नीचे दबा दिया और मुकुट चला गया अर्जुन का, गर्दन नहीं लगा गया, तो ये रक्षा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इतना लिखा हुआ है, परंतु ये श्लोक इतना अच्छा है कि इस श्लोक के ऊपर अधिक से अधिक प्रचार करके अधिक से अधिक उदाहरण देने से लोग भक्ति में रुचि रखेंगे, क्योंकि इसमें भगवान की रक्षण का और पोषण का वर्णन है। योग पोषण है, क्षेम रक्षण है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का योग क्षेम करते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्त का योग क्षेम करता है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में इसके ऊपर बहुत कुछ कभी भी बोलना चाहें, बहुत ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, और शास्त्र से उदाहरण ढूंढना चाहें तो मिल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं 23वें श्लोक में। यापि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया नविता तेपि मामेव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये अपि और भी जो अन्य देवता भक्ता, और किसी देवता के भक्त हैं, ये एक ही जगह है पूरी भगवत गीता में जहां देवता के लिए भक्त शब्द लिखा है। पूरी भगवत गीता में भक्त शब्द केवल भक्ति के लिए, यहां देवता के लिए। मेरे को कितनी 85 के, मैं समझता हूँ 84 की बात होगी शायद, 84 की। एक बार मैंने भक्ति, भगवत गीता में भक्ति शब्द कहाँ है सब ढूंढा था, तो सिर्फ एक ही शब्द भैया देवता के लिए मिला था, बाकी सब भक्त के लिए। परंतु ये देवता के लिए क्यों है? क्योंकि भक्ति देवता की नहीं होती है, भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। देवता का पूजन हो सकता है परंतु भक्ति नहीं, भक्ति केवल भगवान। ये भक्ति क्यों लिखा है? क्योंकि तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं वो भी कुंती पुत्र मेरी ही भक्ति करते। तीसरी लाइन को क्या लिखा है देखो, ते भी मामेव कुंते, करते मेरी ही पूजा है, इसलिए भक्ति शब्द। नहीं तो भक्ति शब्द देवता के साथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब यजन्ते अविधि पूर्वकम, परंतु विधिवत पूजा मेरी नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते, सीधी नहीं करते हैं। और देवता की पूजा कैसे करते हैं? यजन्ते, पूजा करते हैं, यजन करते हैं, श्रद्धान विता, बड़ी श्रद्धा के साथ। अब इस श्लोक को समझने के लिए पहले तो 15वें श्लोक में जाओ। 15वें श्लोक में क्या था? 15वें श्लोक में क्या था? ये प्यान्य ज्ञान योगे न, ये इसमें तीन है ना, तो तीन में 16 से 19 तक किसका वर्णन हो गया? विश्वरूप का हो गया। फिर 20 और 21 में देवता का हो गया कि जो देवता का स्वर्ग जाना चाहते हैं परंतु वापस आ जाते। तो अब यहां अर्जुन पूछता है कि देवता की पूजा करने वाला वापस क्यों आता है, कारण क्या? भाई देखो, वो विश्वरूप वाला वापस नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है, और विश्वरूप वाला वापस नहीं आता है, परंतु ये वापस क्यों आता है? तो उसके लिए ये उत्तर है कि वो करता देवता की पूजा है, पूजा असल वास्तव में मेरी होती है, श्रद्धा भी उसकी उसकी है, परंतु विधि पूर्वक नहीं है। और दूसरा श्लोक इसके बाद आएगा, वो विधि पूर्वक क्यों नहीं है, वो है 24वां श्लोक। तो आइए, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद पहले 7वें अध्याय का भाव दे रहे हैं। देवता के उपासक कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्प मेधस होते हैं, लिखा है ना। ये हमने चर्चा की थी अगर आपको याद हो, देवता के उपासक कम बुद्धि वाले क्यों होते हैं। एक प्रश्न ही आप समझ लो कि 7वें और 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की उपासना के विषय में देवताओं की पूजा करने वालों के लिए क्या कहा है और क्यों कहा है, क्या कहा है और क्यों कहा है, ये प्रश्न अगर आपके मानो परीक्षा में आए तो क्या लिखेंगे? ऐसा प्रश्न है क्या आपके यहाँ? हाँ, क्या कहा है और क्यों कहा है, हम ये आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप इसको समझिए। क्या कहा है और क्यों कहा है, इसको बुद्धि लगाइए। हमने आपको उस दिन जब पढ़ाया था कम बुद्धि वाले हैं, तो उसमें 4-5 कारण बताए थे। क्या क्या कारण थे, किसी को याद है? इसके एक तो उनका स्वभाव नीचे के गुणों का होता है, दूसरा
वो भगवान को इच्छाओं की पूर्ति में अच्छा मानते हैं,
इच्छा है वो
जो इच्छा भगवान पूरी नहीं कर सकते समझते हैं वो देवता से कराते हैं। कहीं 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 ये भगवान नहीं कर सकता इसलिए देवता से लेते हैं। तो ऐसे चार पांच लिखे थे ये याद रखना था। यहाँ प्रभुपाद ने कहा उसको अधिक बुद्धि अल्प मेध सा कहा है। क्यों कहा है प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, इसलिए कहा है कि वो मेरी अप्रत्यक्ष पूजा करती है। पूजा तो मेरी है परंतु अप्रत्यक्ष है, यही लिखा है। देखिए किताब में ये लिखा है ना। अब प्रभुपाद जी इसके बाद भागवत का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तात्पर्य में इसके बाद भागवत का श्लोक है, लिखा है श्लोक है, श्लोक का ये अर्थ है। ये श्लोक है कौन सा, यथा तरोर मूल निश्चयन त्रिपद्यन्ते साख भुजा भुजा उपशाखा। और दोनों देखो उसके नीचे पहले ये दिया फिर नीचे दूसरा दिया है वो पूरा प्राणा, पेट में भोजन डालने से सारे शरीर को शक्ति मिलती है। ये श्लोक याद है किसी को, ये ध्यान ये श्लोक दिया है, ये इसको आप लिखो, ये भागवत का श्लोक है। ये भागवत में श्लोक होना चाहिए चौथे स्कंद के अंतिम अध्यायों में, क्योंकि ये श्लोक नारद जी बता रहे हैं प्रचेताओं में, तो ये नारद की शिक्षा का श्लोक है। तो दो तो आ गया चार, 31-14 अंतिम श्लोक, अंतिम अध्याय का श्लोक है बराबर। अब इतना लिख के प्रभुपाद जी कहते हैं देवता जो है वो कौन है, भगवान के विश्व के संचालन में अधिकारी अधिकारी है। किसके अधिकारी हैं, सरकार के। अब प्रभुपाद जी के एक सिद्धांत क्या था स्थापित कर रहे हैं, तो नियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, सरकार। अधिकारी कानून नहीं बना सकता है, सरकार बनाता है और कानून का पालन कराना है अधिकारी। तो देवता है अधिकारी भगवान की सरकार में, तो कानून तो भगवान, नियम तो भगवान बनाएगा, संविधान भगवान बनाएगा। संविधान तो जो अधिपति हैं किसी विभाग के वो तो नहीं बना सकते। इसीलिए भगवान सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, केवल प्रभुपाद ने लिखा है। इसलिए ये सब भगवान के विश्व के संचालन में अधिकारी सेवक है, परंतु धर्म देने वाला भगवान है, उसी की एकमात्र उपासना करनी चाहिए प्रभुपाद जी से कहते। और फिर उसी श्लोक का अंतिम भाग कह रहे हैं। देखिए अब उस श्लोक का अंतिम भाव है, देखो ऐसे ही जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो सारे ही अधिकारी अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब क्या समझ में आया, सरकार हो गई जड़, सरकार हो गया पेट और अधिकारी हो गई पेड़ की डालियां और अंग शरीर के अंग। तो भगवान की पूजा करोगे तो सबकी हो जाएगी। अब ये बात समझ में आई, प्रभुपाद ने बीच में एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया है। ये इस श्लोक का दूसरा दृष्टिकोण है। समझ में आया किसी को, ये मैं जो कहा आपको समझ में आया, इसमें इस श्लोक को प्रभुपाद ने सरकार को जड़ से और पेट से तुलना दी है, और देवताओं को पेड़ की शाखाओं उपशाखाओं से या शरीर के अंगों से उपमा दी। तो जड़ में पानी और पेट में भोजन, ऐसे पूजन भगवान का, देवता अपने आप प्रसन्न। ये सिद्धांत समझ में आया? ये दूसरे दृष्टिकोण से प्रभुपाद समझा रहे हैं, सामान्य दृष्टिकोण नहीं है, बहुत बहुत गहराई से इसको समझा रहे हैं। अब ये सब सरकार के प्रतिनिधि हैं, सब देवता भगवान के विश्व के संचालन के सचिव हैं। सारे सुर भगवान के विश्व के संचालन के सचिव हैं, सुर का मतलब देवता, उसके सचिव हैं। अब सचिवों को कुछ घूस दे के काम कराना या सीधा सरकार स्वामी के पास जाना, दोनों में से सही क्या है? तो देवताओं की पूजा करने की प्रभुपाद जी तुलना किससे दे रहे हैं? घूस देने से। देवताओं की पूजा है ब्राइब देने से, घूस देना किसी को, उसके तुलना की गई है। और जब किसी को घूस देते हैं, कोई अगर किसी सरकारी काम के लिए किसी ऑफिसर को अगर दे घूस, तो उसको क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? वो क्या है? वो अवैध है। क्या लिखा है? अविधि पूर्वक। यहां अंग्रेजी में लिखा है इलीगल, अवैध है शब्द होना चाहिए, अवैध लिखा है ना, अवैध है। और यहां इसको अविधि पूर्वण कहा गया है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अनावश्यक देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो फिर अनावश्यक शब्द क्यों लिखा है? बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं लिखा प्रभुपाद ने कि भगवान देवताओं की पूजा बिल्कुल बंद कर रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं बोला पूर्ण बंद कर, ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसे ये शब्द एक अननेसेसरी क्यों डाला, अनावश्यक? तो इसका मतलब कहीं आवश्यक भी होती है। अर्जुन से श्री कृष्ण ने देवी की पूजा कराई युद्ध से पहले, महाभारत में लिखा है। कुमारियों ने कात्यायनी की पूजा की श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। कौंडिन्यपुर में रुक्मणी जी देवी की पूजा की कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण समंतक मणि को लेने गए तो सारे यदुवंशियों ने देवी की पूजा की, किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान का पिता नंद बाबा अंबिका वन में शंकर जी की पूजा करने गए, तो इसका ये एक शब्द लिखने से कहीं पूजा करने की आवश्यकता हो सकती है क्या भौतिक जगत में? परंतु उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने का हो तो कोई आपत्ति नहीं। तो ये अननेसेसरी शब्द लिखा है ना, बड़ी सावधानी है। अंबिका वन है कहां? वो तो अंबाजी है, उसको अंबिका वन कुछ लोग कहते हैं, वहां अंबा अंबा जो अंबाजी है, कुछ लोग कहते हैं। जयपुर के पास में भी एक स्थान है अंबिका वन, ढूंढना चाहिए उसको भी। क्या लिखा है? नहीं, वैसे अंबाजी जो है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का, वही अंबिका का वही होना चाहिए। अंबिका वो एक मान्यता वो भी है, वो सर्प अजगर ने पकड़ लिया, कौन था सुदर्शन नाम का असुर था, नहीं गंधर्व था। तो अब 24वां श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक अविधि पूर्वक की परिभाषा बता रहा है। अविधि पूर्वक क्या है? अहमि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वे नातश्चैवन्ति ते। भगवान कहते हैं यज्ञ करते हैं इंद्र का, यज्ञ करते हैं चंद्र का, परंतु यज्ञपति तो हूं मैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुर एव च, सारे यज्ञों का स्वामी और भोक्ता मैं हूं। अच्छा, आपसे कोई पूछे कहां लिखा है भगवत गीता में कि मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूं? भोक्ता अरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, तो प्रमाण आपको भगवत गीता से देना, तो आप भगवत गीता समझते हैं। तो ये तो सिद्ध हुआ कि सारे यज्ञों का यज्ञपति तो भगवान है और सर्वलोक महेश्वर भी वो है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं न तू माम अभी जानाती, मेरे विषय में ये पूर्ण रूप से जानते नहीं। ये अभी जानंती का अर्थ है मेरे विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, जो मुझे ऐसे नहीं जान, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं यज्ञपति हूं, जो ये नहीं जानते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वर हूं। कितना नहीं जानते हैं? तत्वे ना तस मतलब तत्व में नहीं जानते हैं, तत्व से नहीं जानते हैं। चैवंती ते का मतलब क्या होगा? पतन होता है, गिर जाते का मतलब स्वर्ग लोक से वापस पृथ्वी पे आते। तो अब अविधि पूर्वक क्या हुआ कि भगवान के विषय में तत्व से नहीं जानते। क्या भगवान के विषय में तत्व से नहीं जानते हैं? कि भगवान सारे यज्ञों का और लोकों का स्वामी है, इसलिए उनका पतन होता है। पूजा तो भगवान की होती है लेकिन पतन इनका हो जाता है। अब एक आपको पहले बताया था ना, पूजा पहुंचती है भगवान के पास, फल देते हैं भगवान, लेकिन पूजा करने वाला जाता है देवलोक में। देवता की पूजा करेगा तो पूजा का फल तो जाएगा भगवान श्री के पास, भगवान के पास। पूजा जो है, पूजा जो जाएगी भगवान के पास, फल भी देगा भगवान, परंतु पूजा करने वाला कहां जाएगा? और हमने उदाहरण क्या दिया था आपको, एक सामान्य संसारी उदाहरण दिया था जो हम प्रचार में लोगों को देते हैं। आपको जब ये श्लोक पढ़ाया था तब दिया था, आप मथुरा स्टेशन पे जाओ, बोलो बंबई का टिकट दो, पैसे आपसे लेंगे। पैसे कहां जाएंगे? बंबई जाएंगे क्या? पैसे कहां जाएंगे? सरकार में। पैसे जाएंगे सरकार में और आप जाओगे बंबई, तो पूजा करोगे, पूजा जाएगी कृष्ण के पास, लेकिन आप जहां का मांग रहे हो, जिस देवता का नाम ले रहे हो, आप वहां जाओगे। टिकट लो कलकत्ते का तो आप जाओगे कलकत्ता, परंतु पैसा फिर भी जाएगा सरकार में, कलकत्ता पैसा नहीं जाएगा। तो आप जो जिसकी पूजा करेंगे आप वहां जाओगे, परंतु पूजा भगवान के पास जाएगी, और फल जो उसका देगा वो भी सरकार देगी, क्योंकि गाड़ी सरकार की है, पहुंचाएगी सरकार आपको। भाई जो टिकट देने वाला तो नहीं पहुंचाता है। तो पूजा भगवान के पास जाएगी, परंतु आप वहां जाएंगे जिसका नाम लिया है, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? आगे पढ़ते हैं, अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च। क्या हो गया, चलता नहीं है मशीन हमारी। अविधि पूर्वम की परिभाषा है ये, पहले तो ये समझो। 24वां श्लोक क्या है? ठीक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं यज्ञों का वर्णन, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेद शास्त्र में है, परंतु उन सब का उद्देश्य भगवान विष्णु का परम पुरुष भगवान की संतुष्टि है। तो पहले प्रभुपाद जी ये कहते, फिर एक तक फिर कहते हैं यज्ञ शब्द का अर्थ ही है विष्णु, और फिर कहते हैं भगवत गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है भगवत गीता में, ये तीसरे अध्याय में प्रभुपाद ने बोला, कौन सा श्लोक है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन तदर्थम कौनते मुक्त संग समाचर। तो यज्ञ के लिए काम करोगे विष्णु के लिए तो बंधन से मुक्त हो जाओ। तो श्री प्रभुपाद जी ने पहले भाव ये दिया है जो श्लोक में ले, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता प्रभुर्च, ये दो लाइन का तात्पर्य हो गया, ठीक है। अब प्रभुपाद जी सारांश दे रहे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं यज्ञ का भोक्ता और ईश्वर हूं, ऐसे ही लिखा है ना। ये सत्य ये तत्व कम बुद्धि वाले नहीं जानते, तो ये एक और आपका देवता कम बुद्धि वाले क्यों नहीं है, क्योंकि ये तत्व नहीं जानते। आपकी उस लिस्ट में एक ये नंबर लिखो, वो इस तत्व को नहीं जानते इसलिए कल कम बुद्धि वाले हैं। तो वो लिस्ट पूरी बढ़ाओ, हमको ही भूल जाता है, उस दिन जब बोलते हैं तब हमारे को अंदर से आता है, क्यों पढ़ के, ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है और मैं बोलता हूँ, मैं तो जो अंदर से आता है वो बोल रहा हूँ आधार पे। अब लिख के इसको बना लेंगे तो काम आएगा। इस तत्व को नहीं जानते हैं इसलिए उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है, और देवताओं की क्षणिक लाभ के लिए पूजा करते हैं, इसलिए वापस वो भौतिक जगत में आते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। इच्छा ही जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं इनको, कौन किसको, कम बुद्धि वालों को प्रभुपाद जी दे रहे हैं सलाह, क्या कह रहे हैं, अगर कुछ चाहिए भी संसारी भोग तो भगवान के पास चले जाओ, शुद्ध भक्ति तो नहीं है फिर भी आपके इच्छा का फल मिलेगा, उसके साथ क्या लाभ होगा। ये प्रभुपाद ने अपनी तरफ से सलाह कहां से दी है, अकाम हो सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुषम परम। परंतु हमने एक प्रश्न और पूछा आपसे, भगवान भौतिक कामना के पल्लिए भी भगवान के पास जाओ, शुद्ध भक्ति नहीं है फिर भी आपकी कामना पूरी हो जाएगी, परंतु एक लाभ और होगा, वो क्या, वो हमारी इच्छा पूरी करने के विधि विधानों के अंदर हमारे हृदय को भगवान पवित्र कर देंगे, जो देवता नहीं कर सकते। जैसे ध्रुव महाराज गया था राज के लिए, परंतु भगवान ने उसके हृदय को इतना पवित्र किया कि राज की इच्छा ही खत्म हो गई। तो भगवान के पास अगर भौतिक लाभ शेयर के लिए भी जाएंगे तो ये कौन से भक्त कहलाएंगे, सकाम प्रधानी भूता सकाम भक्त, आर्थो जिज्ञासु के अंदर अर्थार्थी के उसमें आएंगे। अब इस विभाग का पूर्ण आहुति का श्लोक पढ़ रहे हैं, यान्ति देवता देवान पेत्रन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतिज्या यान्ति मदया जिनो पिमा। शब्दों का अर्थ बहुत स्पष्ट पड़ा है, देवता का पुजारी देवता के पास, पितर का पुजारी पितर के पास, भूत का पुजारी भूत के पास, और अब मेरा भक्त मेरे पास। बहुत साफ लिखा हुआ है। अब एक मैं साहब से अगर प्रश्न पूछूं कि विश्वरूप की उपासना करते हैं, वहां भी हमने देखा कि भाई मंत्रों अहम अहम औषधम मंदम ये सबको सब कुछ तो भौतिक बातें थी, भाई अग्नि मैं हूं या सूर्य मैं हूं जो कुछ भी हो, परंतु वो मुक्त हो जाते हैं, ये क्यों नहीं होते? देवता के पुजारी क्यों नहीं होते? वो भी विश्व रूप तक ही उनकी जानकारी है। एक बहुत अच्छा रहस्य चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, कह रहे हैं देवता की पूजा भगवान की विभूति समझ के करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु भगवान समझ के करेंगे तो अविधि पूर्वक हो जाएगा। भगवान की विभूति है ये सारे, यहां लिखा है जो मेरी पूजा विश्व रूप समझ के करते हैं वो नारायण मुझे समझते हैं कि नारायण है हूं मैं, और सूर्य जो है वो नारायण की विभूति है, करती सूर्य की पूजा है पर समझते हैं सूर्य विश्व रूप की एक विभूति है, तो मैं उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये होगा वो भगवान की विभूतियों की पूजा करते हैं, जब जानते हैं कि ये विभूतियां भगवान की हैं इसलिए उनको मुक्ति मिल जाती है। परंतु दूसरे तो केवल देवता की पूजा करते हैं जो देवता की पूजा का नियम लिखा है, वो भगवान का उसमें उनको कुछ जानकारी नहीं। परंतु जो भक्त किसी देवता की पूजा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि ये भगवान का विभूति है, सेवक है, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत श्लोक लिखे हैं श्रुति के स्मृति के वेद के चक्रवर्ती पाद ने कि भगवान नित्य हैं और देवता अनित्य हैं, न भक्त भगवान का पतन होता है न भक्त का पतन होता है। बलदेव विद्याभूषण चक्रवर्ती श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसकी इच्छा है चंद्रलोक में जाने की सूर्य लोक में जाने की तो उसका विधि विधान शास्त्रों में दिया है, पालन करो और वहां जाओ। प्रभुपाद ने पहले ये लिखा है देखो, और उसके लिए एक शब्द लिखा है, उसकी पूजा को कहते हैं दर्श पौर्णमासी, दर्श पौर्णमासी। यहां लिखा है पूर्ण वही पूर्णमासी के दिन पूजा करते हैं और सात्विक भाग में। अच्छा, बलदेव विद्याभूषण ने इस श्लोक में जो चार है ना इनके लिए एक भाव दिया है, उसको आप समझ लीजिए। देवता का उपासक सतोगुण का है यहां इसमें, पितृ का पूजा करने वाला रजोगुण का है, भूत की पूजा करने वाला तमोगुण का है, और भगवान की पूजा करने वाला गुण अतीत है। ये चक्रवर्ती पाद ने इन चारों को ऐसे विभाजित किया है, देवता का उपासक सतोगुण में है, चंद्रमा पूर्णमासी के दिन वो जो दर्श चंद्रमा पूर्णमासी है वो से पूजा करता है वो सात्विक है, पितृ का उपासक राजसिक है, भूत का उपासक तामसिक है, और मेरा उपासक निर्गुण है, गुणातीत है। अच्छा श्री प्रभुपाद ने ये लिखा और फिर नीचे क्या लिखा? ये कहाँ लिखा है कि किसको किसी लोक में जाना है तो उसकी पूजा इस प्रकार से करे, ये यज्ञ करे, कहाँ लिखा है? वेदों के कर्मकांड विभाग में ऐसी पूजा का वर्णन है। ये लिखा, दूसरी लाइन देखी, ये सारा आपको वेदों के कर्मकांड में वर्णन मिलेगा। और पितरों की जो पूजा करेगा वो विशेष उसके लिए यज्ञ रखे गए हैं। और ऐसे भूत प्रेत की पूजा करने वाले यक्ष राक्षस पीत बैताल ऐसे बहुत से नाम लिखे हैं। और इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं इसको कहते हैं तांत्रिक, तांत्रिक लिखा है क्या? काला जादू, काला जादू लिखा है ना, ये है तांत्रिक उपासक। ये तांत्रिक उपासक हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो तांत्रिक भूत प्रेत की पूजा को आध्यात्मिक मानते हैं परंतु पूर्ण रूप से भौतिक कार्य। आप उज्जैन में गए हैं, काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाते हैं, देखा है? उज्जैन में काल भैरव में बोतल बाहर शराब की लेके ऐसे डालेंगे और अंदर जाकर गड़गड़ करके और फिर आधी भर के उसको वापस देंगे और बाहर की भाई शंकर जी का प्रसाद हम देख के आए उसको। और इसके विपरीत जाएंगे अगर नरसिंगा भगवान जो उसको पानक पानकम नरसिंगा मंगलगिरी के ऊपर वहाँ इतना बड़ा मटका मिलेगा गुड़ के पानी का, ले जाओ और नरसिंह के मुंह में जालो गड़गड़ सब अंदर चला जाए, कहाँ जाएगा पता नहीं, अंदर चला जाता है। फिर आधा मटका डाल के देते हैं, बहुत अच्छा होता है, पीने में पियो जैसे अमृत लगता है, क्या है पता नहीं, वो मटका गुड़ पानी है, कुछ और मसाला कुछ मिलाते हैं परंतु भगवान के अंदर जाके प्रसाद बन के आता है, ऐसा अच्छा लगता है। परंतु दो दिन ला नहीं सकते, यहाँ तक उधर ही पीना पड़ेगा। तो मंगलगिरी नरसिंह देव पानकम वो जो मटका ले लो 50-100 रुपये का और अंदर सारा। अब देखो तांत्रिक क्या करते हैं, शराब, और ये क्या करते हैं, पानकम, दोनों में अंतर क्या है? वो भूत वाले हैं, वो भूत लोक में जाएंगे और ये भगवान वाले हैं भगवान के पास। काम दोनों का एक जैसा दिख रहा है, दोनों का काम एक जैसा दिख रहा है लेकिन दोनों का फल अलग है। आज जगन्नाथ जी को औषधि पिला रहे हैं आजकल, हाँ औषधियाँ बना रहे जगन्नाथ जी के लिए, काढ़ा वाड़ा कुछ क्या बना रहे, गरम ठंडा प्रसाद ठंडा ले आए ना भाई, यहाँ भी सब रोगी बैठे हैं। हाँ जी कहाँ गया है, अदृश्य हो गया ना, क्या हो गया? हरे कृष्ण, सीक्रेट कैमरा के लिए शब्द है चित्रगुप्त, चित्र फोटो गुप्त सीक्रेट सबके कंधे में बैठा है, सुबह से शाम तक जो करते हैं रील बनती जाती है और उसका बहुत डब्बा तैयार रहता है, मरने से पहले सारी रील दिखाता है, जिसने किया अच्छा काम हरी कथा हरी कीर्तन वो मरते समय कहे अरे हाँ वाह वाह बहुत अच्छा, और जिसने की बदमाशी और होता मरता जाता है वो रील देखता है उस समय, अंत में वो दिखाता है। नहीं, बाहर के देशों में आपकी गाड़ी गलत हो गई तो वो आपका फोटो निकल जाएगा, गाड़ी आपको दिखाएंगे इस टाइम ऐसे गए, इतने पैसे भरने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो ये तो संसार वाले कर रहे, चित्रगुप्त तो कब से कर रहा है ये काम। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, शुद्ध भक्त केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, इसलिए भगवान के वैकुंठ धाम या कृष्ण लोक में जाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। इस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं बहुत सरलता से समझ सकते हो कि देवता का पुजारी देवलोक में जाएगा, पितृ का पुजारी पितृलोक में, और तांत्रिक जो है भूतलोक में जाएंगे, और शुद्ध भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के पास जाएंगे। परंतु ये जानकारी सामान्य लोगों को नहीं है। कैसी जानकारी लिखा है? इसके लिए जानकारी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, क्या है? नहीं, इसके बाद दुर्भाग्य से अधिक लोगों को नहीं, सूचना के साथ एक और शब्द है, भगवान के ऐसे कौन से लोगों की, विष्णु को होते हैं। यहां भी अंग्रेजी में शब्द है सबलाइम, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज सबलाइम प्लैनेट्स वेयर कृष्ण एंड विष्णु लिव एंड बिकॉज दे डू नॉट नो ऑफ देम दे फॉल डाउन। भगवान के आध्यात्मिक लोगों की जानकारी नहीं है, इसलिए उनका पतन होता है, और ये भी एक कारण है पतन का, भगवान के लोग की उनको जानकारी नहीं है इसलिए पतन होता है, ये भी अविधि पूर्वक क्रम के अंदर जानकारी नहीं है। अब प्रभुपाद कहते हैं देवता वाले गिरे हैं, इसकी क्या बात करें, ये जो निर्विशेषवादी है ये भी ब्रह्म ज्योति से इनका भी पतन होता है। और अब प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में अपना जो क्या कहते हैं मूड और मिशन को, क्या कहते हैं हिंदी में, मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। देखो ना, कृष्ण कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य, कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन का, इसलिए ये जानकारी, ये दिव्य जानकारी, ये अंतरंग जानकारी सामान्य मानव समाज को देने का, और उसके लिए सर्व श्रेष्ठ और सरल साधन हरे कृष्ण मंत्र जपने का, और इसके द्वारा वो जीवन में सफलता प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है। तो ये है इस श्लोक में भगवान श्रील प्रभुपाद जी के इस्कान स्थापना का उद्देश्य। यह हमारा तीसरा भाग पूरा हुआ, चौथे भाग है पूर्णाहुति का भाग, शुद्ध भक्ति की महिमा, शुद्ध भक्ति की महिमा 26 से 34 तक। शुद्ध भक्ति की महिमा, ये बिल्कुल शुद्ध भक्ति, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें एक श्लोक ऐसा आएगा जरूर जो निष्काम कर्म योग और शुद्ध भक्ति के बीच का है, यत करोषि यद अच्छनासि वाला श्लोक आएगा। एक श्लोक पढ़ें कि यहाँ इतना बहुत हो गया आज का? अब दो दिन में इसको, ये श्लोक तो है 8, 26 और 4 30 और 4 34 8 श्लोक है, तो दो दिन में इसको करेंगे पूरे, तब हमारा नवा अध्याय होगा पूरा, फिर आपको जो करना है वो आप बताइएगा। फिर प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे, फिर परीक्षा, किसकी इच्छा है? पितर लोग की इच्छा है। अभी तक वो 3 अध्यायों की हो रही है, तो आगे भी हो सकती है, अभी तक तो ऐसे ही हुआ है। नहीं, आपकी स्थिति को देखते हुए ऐसे लगता है कि 3 अध्याय वाली आपके लिए ठीक है, 6 वाली भारी पड़ेगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। इस श्लोक में भक्त्या दो बार आया, भक्ति उपहृतम और भक्त्या दो बार आया। पहले तो चार शब्द है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई मेरे को पत्र अर्पण करता है, पुष्प फल या जल, इनका चारों का उदाहरण आप पहले ढूंढ के बताओ। पत्र किसने भगवान को अर्पण किया और भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने स्वीकार किया? अद्वैताचार्य तुलसी का मंजरी और पत्र रत्नेंगे। और कोई और पत्र का उदाहरण है क्या? एक तुलसी दल रुक्मणी जी ने ताराजू में रखा था और भगवान ऊपर उठ गए थे, कथा सुनी है? तुल्ला के ऊपर तुलसी का पत्तल ही रखा था ना, तुलसी के पत्ते से भगवान चलू भर जल मात्रे न तुलसी दले न, चलू भर जल और तुलसी दल से भगवान अपने आप को भेज देते हैं, भक्त वत्सल भगवान अपने आप को भेज देते हैं। तो ये है। और किसी ने पत्ता अर्पण किया हो? केले के पत्ते कौन अर्पण करता था? चेतना महाप्रभु ने क्या था? केले के पत्ते और धोने थे और क्या था? और कोई साग का पत्ता अर्पण किया था किसने? विदुर घर साग खाया ना विदुरानी ने, तो केले का छिलका दिया था, वो फल में आ जाएगा, परंतु विदुर जी ने साग का साग तो पता ही हो गया ना, पालक का पत्ता अर्पण किया ना, ना? छप दुर्योधन का मेवा त्याग साग भी तो साग लिखा है, तो साग तो पते ही हो गया ना, तो ये भी पते का उदाहरण हो गया ना। और भी कोई है क्या? भगवान ने स्वीकार किया हो, पत्ता अर्पण किया और भगवान ने स्वीकार किया। चलो पुष्प का उदाहरण, गजेंद्र ने पुष्प अर्पण किया। और किसी ने फूल भगवान को अर्पण किया, भगवान ने फूल को स्वीकार किया? कौन नाम क्या विचारेगा? सुधामा का माल फूल की माला भगवान ने स्वीकार की, बहुत अच्छा। सुधामा कल ही हमने इसकी कथा की है, सुधामा का मथुरा में भगवान ने फूल का माला स्वीकार किया। और सुधामा माली, और किसी ने फूल भगवान को अर्पण किया हो? वैसे बहुत ऐसे आज भी भक्त हैं जिन्होंने फूल अर्पण किए हैं भगवान को, इतिहास के उदाहरण तो नहीं है, सामान्य उदाहरण है। एक श्री जो हमारे गोपाल जी नाथ जी जो है गोवर्धनधारी, इसके पुजारी फूल रोज गुलाब के लाके भगवान की माला बना के भगवान को अर्पण करते थे। उस जमाने में शहनशाह अकबर यहाँ आए हुए थे आगरा के, तो फूल लेने के लिए उसका आदमी भी आ गया, तो ये रोज रुपये का लेता था। तो उस दिन उसने कहा, ये नहीं, मेरे को यही फूल चाहिए, मैं दो रुपया दूंगा। इसने तो इसने बोला, भगवान से राजा थोड़ी बड़ा होता है, बोला मैं 5 रुपया दूंगा। तो उसने कहा, मैं 10 रुपया दूंगा। सब राजा के आदमी ने, इसने कहा मैं 50 दूंगा। तो उसने कहा, मैं 75 दूंगा। इसने बोला, 100 दूंगा। तो राजा वाला थक गया, बोला 100 तो बहुत बड़ा है, उस जमाने में 100 कहाँ से आए। फूल वाला बोला, है रुपये का, रोज तेरे को देता हूँ, लेकिन आज 100 रुपया चाहिए। इसलिए भगवान के लिए फूल देने हैं तो 100 रुपया का घर बेच दिया और फूल लेके भगवान के गले में डाला, भगवान का गला ऐसे झुक गया कि ये भार मैं कैसे उठाऊंगा। इस भक्त ने मेरे लिए अपना सर्वस्व आत्मसमर्पण कर दिया। तो पुजारी ने पूछा कि ठाकलाल जी आपका सर झुक गया। बोलकर वो फूल वाला के फूलों का भार मेरे गले में बहुत भारी पड़ गया, उसने घर बेच के मुझे फूल दिए, अब उसके भरण पोषण मंदिर की ओर से होना चाहिए, अब उसको चिंता की जरूरत नहीं, अब मंदिर की तरफ से उसको रहना खाना पीना सब देंगे। तो जैसे ये अभी की बातें हैं, फूल भगवान ने ऐसे भक्तों से स्वीकार किए हैं। और फल एक तो सबरी का है, बेर का फल राम जी को, और ओ फल कौन थी फल वाली, निषाद राज गुहा जो रामचंद्र को मिला था श्रृंगेरपुर में, उसकी माँ थी। और जब निषाद ने कहा कि ये मेरा मित्र राम चंद्र और ये लक्ष्मण सीता के साथ आए हैं, तो माँ के मन में आया कि इसको मैं गोद में ले लूँ। परंतु राम जी तो तब 17-18 साल के थे, वनवास जा रहे थे, तो माँ के मन में ये भाव था कि मैं गोद में कृष्ण को लूँ। वो निषाद की माँ यहाँ फूल फूल बेचने वाली बन के आ गई, और कृष्ण को फूल देने से पहले कहा मेरी गोद में बैठो फिर फूल दूंगी फल दूंगी। तो वो ये इसकी पूर्व कथा है। तो फल अर्पण किया फल वाली ने, और किसी ने फल अर्पण किया हो, जगन्नाथ को कौन आम किसने अर्पण किया, भोरिया कौन सा क्या नाम है उसका, दासिया, बाहर से आम तो अंदर से आम पहुंच गया है ना। और क्या है कि आपके पास दिमाग भगवान ने दिया है, उसको उपयोग करोगे तो ठीक है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। अब ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सोचो तो। आप तो कहते चलो प्रसाद पका मिलता है इसलिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो बहुत सा मिल जाएगा। और किसी ने फल अर्पण किया हो, हाँ विदुरानी का केले का छिलका फल है, वैसे फल तो नहीं है लेकिन सुदामा के जो तंदुल है वो भी एक प्रकार का तुच्छ चीज है, लेकिन भक्ति से दिया तो भगवान ने खा लिया। और ऐसे किसके और चावल चैतन्य महाप्रभु ने छीन के खाए, रघुनाथ दास के। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम किसने अर्पण किया, हाँ दोनों हो गया फिर, और हरे कृष्ण कौन आपका फोन आया है, मैं क्लास में हूँ। हाँ जी पानी किसने अर्पण, किसको किसका, कोलावर्च का टूटे हुए लोटे का पानी चेतना महाप्रभु ने पिया, छीन के पिया है ना, छीन के पानी उसी से लिया, ठीक है। और पानी का कोई एक तो उदाहरण ढूंढो, भगवान को पानी किसने दिया और भगवान ने स्वीकार किया, वैद्य, हाँ मुकुंद, वो दवाई दो, ये वो तो है मुरारी गुप्ता, फिर तोयम यहाँ लिखा है, कोई तो उदाहरण कहीं से ढूंढना, कहीं तो इतिहास में मिलना चाहिए। वैदिक इतिहास में कोई जल किसने अर्पण किया भगवान को? हाँ जी, ढूंढ के आना जल किसने अर्पण किया। एक रंती देव ने जल अर्पण किया था, आखिरी दिन जो जल का बचा था वो भी दिया था, 28 दिन के बाद रंती देव ने जल दिया था। विष्णु भी आया था, तीनों थे अंतिम दिन पे, अंतिम दिन पे भगवान आए थे। और एक गंगोत्री से जल लेके जा रहा था रास्ते में, कोई भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए पशु के रूप में आए, उसको पानी पिलाना पड़ा, ले जा रहा था रामेश्वर, क्या नाम है ढूंढना। एक वो उदाहरण है, और जल का उदाहरण ढूंढो। विश्व वसु जगन्नाथ को जल देते हैं। वरुण ही बलराम जी को तो तोयम में हम सब अटक गए। चलो यहाँ कथा को समाप्त करते हैं, अब तोयम को ढूंढ के आना। हरे कृष्णा।